करीम अध्याय 14 श्लोक संख्या 28। तो आप कई दिनों से भागवत के जो विशेष संवाद है उसको सुन रहे हैं। तो भागवत में कई सारे संवाद हैं, इसलिए भागवत को कहा जाता है संवादमय भागवत, क्योंकि भागवत में कई सारे भक्तों के बीच में, महान महान व्यक्तियों के बीच में, भगवान और भक्त के बीच में, आसुर और भगवान के बीच में, ऐसे क्या है, संवाद ही संवाद है। तो अलग अलग भक्तों को अलग अलग संवाद बहुत आकृष्ट करते हैं। किसी किसी को जब गोपिकाएं भगवान बांसुरी का वादन करते हैं तो गोपिकाएं सब कुछ छोड़कर कृष्ण के पास जाती हैं मध्य रात्रि में, और वहां जो उनका वार्तालाप होता है कृष्ण और गोपिकाओं के बीच में, किसी को वो आकृष्ट करता है। किसी किसी को देवभूति और कपिल देव के बीच का जो वार्तालाप है। तो इस प्रकार से भागवत में अनेक अनेक संवाद है और अलग अलग भक्तों का हृदय ये भागवत आकृष्ट करता है। तो जो भी हो, लेकिन ये जो संवाद चल रहा है ये कौन सा संवाद है, दैत्य और कश्यप का संवाद है। तो कई फेमस संवाद है, उनमें से ये भी एक विशेष प्रसिद्ध संवाद है श्रीमद् भागवतम का, दैत्य और कश्यप का, क्योंकि इसके द्वारा जनसाधारण व्यक्ति बहुत कुछ सीख सकता है और भक्तिमय जीवन में अग्रसर होने के लिए प्रेरणा प्राप्त कर सकता है। अल्टीमेटली भागवत आदि को श्रवण करने का उद्देश्य क्या है, इनका अध्ययन करने का उद्देश्य क्या है, इमिटेशन नहीं, इमिटेशन इंग्लिश में कहते हैं तो उसको कहते हैं हिंदी में नकल करना नहीं, कि चलो कश्यप और दैत्य का जो संवाद है ना, आज घर जाके पत्नी से भी वैसे ही बातें करूंगा, वैसे नहीं। सारे संवादों का उद्देश्य क्या है, इंस्पिरेशन, प्रेरणा प्राप्त करना। भगवान की लीलाओं को श्रवण भी हम करते हैं, समझते हैं, तो उसका एक ही उद्देश्य है, उससे क्या प्राप्त करना है हमें, इंस्पिरेशन, या जो प्रेरणा है वो हमें प्राप्त करनी है। इसलिए हम देखेंगे कई दिनों से हम इस संवाद पर रोज सुनते आए हैं और अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग वक्ता बोल रहा है। जो भी यहाँ बैठता है स्पीकर, वो अपने अपने मंतव्य को प्रस्तुत करता है अपने अपने समझ के अनुसार। इसलिए शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति भगवान का पूर्ण रूपेण गुणगान करने में सक्षम नहीं है। हाँ, ये उसी प्रकार से है, इस प्रकार से पक्षी कोई भी आकाश को छू नहीं सकता, उसके अपने बल सामर्थ्य के अनुसार ही वो एक ऊंचाई तक जाता है। तो उसी प्रकार से कोई भी वक्ता हो या व्यक्ति अपने अनुभव या समझ के आधार पर ही भगवान की जो महिमा है उसका गुणगान करता है। हाँ, क्योंकि कृष्ण क्या है, अनंत है। कोई कहे कि मैं शास्त्रों को समझ जाता हूं, याद कर लेता हूं, कृष्ण मेरे चपेट में आ जाएंगे, पकड़ में आ जाएंगे, ये इम्पॉसिबल है। कृष्ण बुद्धि के द्वारा जानने योग्य नहीं है, बुद्धि का विषय नहीं है। नहीं तो भगवान बोलते बुद्धि मामा भी जानाति, क्या बोला भगवान ने, भक्त्या मामा भी जानाति, मतलब इन सब चीजों के द्वारा भगवान का आकलन करना, भगवान को समझना दुस्तर है। इसलिए केवल हृदय, इसलिए प्रभुपाद कहा करते थे भक्ति इज द अफेयर ऑफ हार्ट, कि भक्ति तो ये हृदय का विषय है। तो ये सब लीलाएं सुनना, भागवत को समझना, सेवाएं करना, उसका एक में उद्देश्य है कि हृदय को विमल करना, मल से रहित करना, जिसके द्वारा कृष्ण के प्रति हमारी जो आसक्ति है वो बढ़े। कैसी बढ़े? जिस प्रकार से गंगा सदैव समंदर की ओर दौड़ती है, उसी प्रकार से हमारा मन, हमारा हृदय कृष्ण की ओर दौड़ना चाहिए। तो अब ये पति पत्नी जो समाप्त कर रहे हैं दिव्य और कश्यप मुनि, तो ये बहुत कुछ नीति शास्त्र आदि की चर्चा करते हैं, क्या योग्य है क्या अयोग्य है आदि आदि का वर्णन हो रहा है। लेकिन इनके संवाद में एक महान भक्त का प्राकट्य हो गया है। कौन से वो भक्त है? शिव जी। अब देखो भक्त का जैसे प्राकट्य हुआ भक्त के विषय में, शिव जी के बारे में, तो ये एक शब्द में बोल के खत्म कर सकते थे, कौन? कश्यप मुनि। लेकिन कश्यप मुनि लगभग श्लोक नंबर 23 से लेकर 28वें श्लोक तक, 28 कल के श्लोक में भी 29वें श्लोक तक केवल किसकी चर्चा कर रहे हैं? शिव जी की चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि शिव जी एक महान भक्त है, और ऐसा नहीं है कि केवल उन्होंने शिव जी के दुर्गुणों की चर्चा की है या कुछ निंदात्मक वचन उनके बारे में बोले हैं। अभी हमें मौका मिलता है किसी के बारे में बोलने का, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? उसके दोषों की चर्चा करते हैं, उसके निंदापूर्ण वचन उसके बारे में बोलते हैं किसी से। लेकिन यहां जो कश्यप मुनि है अपने पत्नी से बात कर रहे हैं, तो शिव जी की हर श्लोक में कुछ ना कुछ क्वालिटीज को या गुणों का वर्णन कर रहे हैं। तो शिव जी कौन है? शिव जी के शब्द से ही, इस नाम से हमें पता चलता है। शिव का मतलब क्या होता है? शुभ या फिर मंगल, ऑस्पिशियस। इसलिए शिव जी किसी के जीवन में आते हैं तो अशुभ होना असंभव है, उसका क्या हो जाएगा? निश्चित रूप से मंगल होना निश्चित है, चाहे समय लग सकता है लेकिन मंगल होना क्या है? निश्चित है। इसलिए जो कश्यप मुनि है वो शिव जी के उन्नत स्थिति के बारे में जानते थे, इसलिए उनके बारे में इतना कुछ बोल रहे हैं। अभी हम किसी के बारे में जानते नहीं है, लेकिन क्या करते हैं? बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन जो कश्यप मुनि थे उनके शिव जी की असली जो पोजीशन है, स्थिति है, उनके बारे में वो अवगत है, इसलिए हर श्लोक में वो उनके गुणों का वर्णन करते हैं। जैसे 23वें श्लोक में एक शब्द आया है भूत ईश अनुचरानी, मतलब जब वो बोल रहे थे ना कश्यप मुनि कि ऐसा घोर तमा वेला, ये जो समय है ये बड़ा भयानक है, उस समय वो कहते हैं कि भूत ईश अनुचरानी कि ये भूतों के स्वामी है, भूतों के स्वामी। शिवजी का एक नाम क्या है पता है आपको? भूतनाथ। क्या नाम है? भूतनाथ। तो ये जो भूतनाथ से समझा जाता है इनके गुण को, सर्वभूत हिते रता, जो भक्त के 26 गुण है उनमें से एक गुण ये भी है कि जो भक्त है सारे जीवों के कल्याण में लगा रहता है, सबका हित चिंतित करता है, किसी का भी अहित नहीं सोचता है, चाहे वो उसका शत्रु भी क्यों ना हो। तो ये भक्त का गुण है। तो शिव जी के इस गुण का वो वर्णन करते हैं इस शब्द को सूचित करते हुए, भूत ईश अनुचरानी, मतलब ये सारे भूत प्रेतों को लेकर अपने संग चलते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है कि वो ऐसे लोगों को प्रचार करेगा, भूतों को कोई प्रचार करने करके वो कहेगा कि मैं आज भूतों का आश्रय क्लास लेता हूँ, पता चले कि भूतों का आश्रय क्लास लेने के लिए वो बैठा है और कोई दिखाई नहीं दे रहा है, अकेला ही क्लास ले रहा है, सारे भूत है वहां उपस्थित, इतना दयावान कोई है नहीं। लेकिन कौन है दयावान? शिव जी है जो भूतनाथ है। और 24 का श्लोक आपको याद होगा तो उसमें वो कहते हैं कश्यप मुनि भगवान भूत भावना, मतलब, और ये शब्द परीक्षित महाराज ने कृष्ण के लिए भी यूज किया है जो 24वें श्लोक में आया था, आज का 28वां श्लोक। ढूंढ रहे हैं। तो ये जो शब्द है भगवान भूत भावना, जब शुकदेव गोस्वामी कहते क्यों तुम कृष्ण के बारे में सुनना चाहते हो परीक्षित, तो पहली चीज बोलते हैं भगवान भूत भावना, क्योंकि जो भगवान कृष्ण है वो सबके प्रेम के विषय है, इसलिए मैं उनके बारे में सुनना चाहता हूं। तो उसी प्रकार से जो शिवजी है वो भूतों के हितेशी है, वो भूतों का भी क्या करना चाहते हैं, हित करना चाहते हैं। हम भूत प्रेत का नाम सुनते ही पहले राम राम बोलना शुरू करते हैं, हाँ, जैसे भक्तिराव ठाकुर कहा करते थे, भक्तिराव ठाकुर ने अपना जीवनी लिखा है, स्वलिखित जीवनी है उनका ऑटोबायोग्राफी, उसमें भक्तिराव ठाकुर कहते हैं मैं जब छोटा सा बच्चा था तो एक ऐसा स्थान था जहां मैं वहां बागान था अमरुद का या किसी आम का या जो भी है, तो वहां मैं जाया करता था और वहां सब लोग कहते थे वहां भूत है बच्चा। तो भक्तिराव ठाकुर कहते मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे सिखाया था, वो कहते बेटा जहां भी भूत होगा वहां क्या बोलना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भक्तिराव ठाकुर कहते हैं कि मैं जब बस बागान में जाता था तो वहां में राम राम का उच्चारण करता था, तो भूतों का कोई प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ा। तो उसी प्रकार से वास्तव में देखा जाए कि ये जो शिवजी है वो भूतों के हितेशी है, जिसका वर्णन कश्यप मुनि 24वें श्लोक में करते हैं इस शब्द से भगवान भूत भावना। तो अगला जो श्लोक 25वां गया उसमें और एक संबोधन उनको यूज करते हैं। तो कश्यप मुनि केवल शिवजी के बारे में ऐसी ही बातें नहीं कर रहे हैं, वो उनकी महिमा को, महिमा के बारे में, स्थिति के बारे में अच्छी तरह से अवगत है। तो जो 25वां श्लोक था उसमें वो कहते हैं अमल रूपम देह, उनके लिए ये संबोधन यूज करते हैं। अमल रूपम देह का मतलब है कि ये जो शिवजी हैं बिल्कुल निष्कुलित हैं, मतलब किसी सारे प्रकार का जो मल है भौतिक उससे रहित हैं। और एक विशेषण यूज करते हैं त्रिभि पश्यन्ति, तीन प्रकार, तीन जो आंखें हैं उनकी या भूत वर्तमान भविष्य को वो क्या करते हैं, देखते हैं, इसलिए इतने पवित्र हैं ये शिव, इसलिए उनका नाम शिव है। और आगे कश्यप मुनि कहते हैं 26वें श्लोक में न यश लोके स्वजनो परावा। तो ये जो 8 श्लोक हैं इनमें केवल कश्यप मुनि ने शिवजी की महिमा का और उनकी स्थिति का गुणगान किया है। तो वो 26वें श्लोक में कहते हैं इस भौतिक जगत में ना उनके समान कोई है, हाँ, ना उनसे कोई श्रेष्ठ है, हाँ, या फिर वो कहते हैं कि उनका ना अपना है ना पराया है। तो जो बद्ध जीव है वो हमेशा द्वंद्व में फंसा रहता है, वो स्थिति परिस्थिति के अनुसार किसी को अपना कहता है और परिस्थिति विपरीत होती है तो उसको क्या कहता है, पराया कहता है। तो ये भौतिक बद्धता का एक लक्षण है, लेकिन शिवजी के साथ ऐसा नहीं है, इसलिए वो पिछले श्लोक में कहते न यश लोके स्वजनो परावा, इस लोक में उनके लिए अपना स्वजन या परा या दूसरा ऐसा कोई नहीं है। फिर आगे वो 27वें श्लोक में कहते हैं, इसके पिछले कल वाले श्लोक में, यशा अनवध्या चरितम मनीषिनो गृणन्ति, बहुत महत्वपूर्ण बात बोलते हैं। वो कहते हैं कि ये शिवजी का जो चरित्र है वो साधारण व्यक्ति का चरित्र नहीं है। यशा अनवध्या, अनवध्या का मतलब निंदा से रहित ऐसा चरित्र है, और ऐसा जो चरित्र आचरण से बना हुआ है, तो ऐसा जो चरित्र है मनीषिनो गृणन्ति, मनीष में जो बड़े बड़े ऋषि मुनीज हैं, विद्वान हैं, अध्यात्म में बड़े चढ़े लोग हैं, वो भी शिवजी की महिमा का अपने जीवा से नित्य गान करते हैं, हाँ, इस प्रकार से पिछले श्लोक में कश्यप मुनि बोलते हैं। फिर आज के श्लोक में क्या कहते हैं, तो इस आज के श्लोक में वो कहते हैं कि ये जो इतने महान हैं शिव जी, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे मूर्ख व्यक्ति हैं, दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हैं, अभाग्य व्यक्ति हैं, जो क्या करते हैं, ऐसे जो भगवान शिव हैं उनके प्रति या उनकी ओर हंसते हैं उनको देखकर। हाँ, तो इस प्रकार से हम वो कहते हैं कि ऐसे मूर्ख व्यक्ति। तो इन सारे महिमाओं से कश्यप मुनि यही स्थापित करते हैं जिस श्लोक को हम बारंबार दोहराते हैं भागवतम के 12वें स्कंध का, वैष्णवाना यथा शंभु, कि वैष्णव गणों में शंभु श्रेष्ठ है। क्यों? कश्यप मुनि इन 8 श्लोकों में अलग अलग संबोधन यूज करके शिव जी की परम स्थिति और शिव जी की जो महिमा है उसको स्थापित करते हैं। तो लेकिन आज के श्लोक में कश्यप मुनि कहते हैं हसन्ति यशा चरितम ही दुर्भागा, कि दुर्भागा व्यक्ति है, अभागा व्यक्ति है, मूर्ख व्यक्ति है। कौन है वो व्यक्ति? वो कहते हैं यर वस्त्र माल्या अभराध लेखने, जो व्यक्ति अपने शरीर के प्रति अत्यधिक आसक्त है। शरीर के प्रति अत्यधिक आसक्त का मतलब कश्यप मुनि यहां कहते हैं जो ये शरीर के किस चीज में लगा है उसको वस्त्र माला आभूषण विलासी लाइफस्टाइल लेप आदि करने में। इसका मतलब है कि जिस व्यक्ति ने शरीर को ही सर्वे सर्वा समझा है, जो भौतिक शरीर है, जो जड़ है, नश्वर है, उसको जिसने सब कुछ माना है और उसी के द्वारा इंद्रिय उपभोग करने में लगा है, ऐसा व्यक्ति वास्तव में क्या है? मूर्ख है। इसलिए श्रीमद् भागवतम में ऐसे व्यक्ति की तुलना गधे से की है। स एव भूतरा, शुकदेव गोस्वामी कहते हैं यशात्म बुद्धि कुनुपेत्रि धातु के, कि जिस व्यक्ति ने इस शरीर के प्रति आत्म बुद्धि की है, हम कहते ना देह आत्म बुद्धि, देहा को ही आत्मा मानने की जिसकी बुद्धि है उसको देहात्म बुद्धि कहा जाता है। इसलिए शुकदेव गोस्वामी कहते यशात्म बुद्धि कुनुपेत्रि धातु के, ये जो शरीर 3 धातुओं से बना हुआ है, कफ पित्त और वात से, जिसके प्रति व्यक्ति ने इतना वो अपने आप को ये शरीर ही समझ लेता है, और जिस व्यक्ति ने अपने आप को ये शरीर समझा है वो व्यक्ति वास्तव में क्या है? मूर्ख है। मूर्ख व्यक्ति कौन है? जो है नहीं उसको है मान लेता है। जैसे कहा जाता है कि पंडित नेहरू एक बार पागल खाने में गए, वो पागल खाने में गए तो एक पागल व्यक्ति से कुछ बोल रहे थे, तो पागल व्यक्ति ने कहा अच्छा तुम कौन हो? पंडित नेहरू ने कहा तुम जानते नहीं मैं भारत का पंत प्रधान हूं। तो पागल व्यक्ति कहते जब मैं भी यहाँ आया था ना तब मैं यही कह रहा था कि मैं भी भारत का प्रधानमंत्री हूं। तो इसका मतलब है कि जो है नहीं उसे है मानना, तो ये भी मूर्खता का लक्षण है। और उसी को श्रीमद् भागवतम के 2 स्कंध में शुकदेव गोस्वामी शुरुआत में कहते हैं जब व्यक्ति शरीर के प्रति आसक्त हो जाता है तो स्वाभाविक रूप से वो अंधा हो जाता है, क्योंकि आसक्ति का लक्षण क्या है? ब्लाइंडनेस या अंधा हो जाना, उसको कुछ दिखाई नहीं देता। इसलिए धृतराष्ट्र उसका उदाहरण है। धृतराष्ट्र अपने पुत्र प्रेम के प्रति इतना आसक्त था जिसके कारण वो बोलता है माम का पांडव, मेरा और उस पांडव के पुत्रों का, वो बल्कि एक ही वंश में थे वो दोनों ही। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आसक्ति व्यक्ति को अंधा बना देती है, और इसलिए शुकदेव गोस्वामी कहते हैं अपश्यताम आत्मतत्वम ग्रहेषु ग्रहमेदिना, कि जो ऐसा आसक्ति से अंधा हुआ व्यक्ति कभी भी वास्तविकता को नहीं पहचान सकता, वास्तविकता को नहीं देख सकता। तो उसी प्रकार से मैं यहाँ कश्यप मुनि कह रहे हैं जो व्यक्ति अपने शरीर के भरण पोषण लालन पालन करने में अत्यधिक आसक्त है वो शिवजी की स्थिति कभी भी समझ नहीं सकता और न समझने के कारण पहला शब्द वो यूज करते हैं हसंती। क्या करता है? शिव जी के प्रति हंसता है। कैसा है ये शिव? ये तो वैसे नग्न घूमता है, राग लगाता है, माला को सर पर डालता है, बड़ी बड़ी चटाएं हैं, सालों भर स्नान नहीं करता। यदि शिव जी का बाह्य रूप से आकलन करे तो भीष्म भूत पिशाच के समान ही है। तो कहते हैं कि आसक्त व्यक्ति कभी भी ऐसे उन्नत वैष्णव का जो चरित्र है उसको नहीं समझ सकता। इसी कारण से वो क्या है? अत्यधिक दुर्भागा है, शारीरिक आसक्ति के कारण। इसलिए भगवत गीता का सर्वप्रथम उद्देश्य यही है, देहिनो स्मृण्यता देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मय्यति। तो धीर व्यक्ति है, कोई शरीर आसक्ति से परे है, वो जानता है शरीर के परिवर्तन को और आत्म तत्वों को। इसलिए श्रील प्रभुपाद सबसे अधिक इस पर जोर देते थे, हमेशा शरीर और आत्मा का वर्णन किया करते थे और जीव के स्वभाव का। तो प्रभुपाद जब अमेरिका में इस प्रकार से प्रवचन दे रहे थे तो सारे लोग प्रभुपाद के साथ, बहुत सारे उनके जो स्टूडेंट्स है या शिष्य हैं, भारत में आए पहली बार और दिल्ली में आए, कैनॉट प्लेस में जो LIC ग्राउंड था वहां प्रभुपाद प्रवचन देने के लिए जा रहे थे शाम को। और इनको लगा, सारे लोग सबको लगा कि आज तो कुछ विशेष होने वाला है प्रवचन में, क्योंकि प्रभुपाद भारत में आए हैं। अभी वो शरीर आत्मा चार प्रकार के दुख, तीन प्रकार के ताप, ये हमें सुनने को नहीं मिलेंगे, कुछ और बोलेंगे प्रभुपाद। तो प्रभुपाद जब प्रवचन शुरू किया, प्रभुपाद ने फिर से उन्हीं चीजों को सबके दिमागों में डाला। तो प्रभुपाद जब वापस आए रूम में तो गुरुदास प्रभु और जो भी शिष्य हैं और वो भी पूछ रहे थे उनको, प्रभुपाद क्या फिर से वही शरीर आत्मा त्रिता चार प्रकार के दुख? प्रभुपाद ने कहा, सबसे पहले तुम ये जान लो। उन्होंने कहा कि हमें लगा कि आप कुछ राधा कृष्ण की लीलाएं बताओगे, कुछ और भारत में आने के बाद वर्णन करोगे। प्रभुपाद ने कहा, सबसे पहले आप ये जान लो कि तुम ये शरीर नहीं हो, इसका अनुभव कर लो, तब फिर आगे तुम वास्तव में भगवान के जो कार्यकलाप है उनको समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से भगवान भी इसी प्रकार का वर्णन भगवत गीता में करते हैं। भगवान कहते हैं, अवजानन्ति मामूढा मानुषी तनुमाश्रितम परम भाव अजानन्तो मम भूत महेश्वर। यदि उस श्लोक को स्पेकुलेट किया जाए तो वहां भगवान कहते हैं मम भूत महेश्वर, एक प्रकार से शिवजी का वहां नाम है, भूत का भी नाम है। तो वहां भगवान कहते हैं अवजानन्ति मां मूढ़ा, जो मूर्ख व्यक्ति है उसी प्रकार से दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है, वो व्यक्ति मुझे ये समझ लेता है क्या कि मैं कौन हूं? एक साधारण मनुष्य हूं। तो इसी प्रकार से जो इस भौतिक जंजाल के प्रति आसक्त है वो कभी भी भगवान भक्त और भक्ति की जो स्थिति है वास्तविक उसको कभी भी नहीं समझ सकता। इसलिए उद्धव ने भी भागवतम के इसी स्कंद में विदुर से जब वो वार्तालाप कर रहे थे तो भगवान की महिमा को वो बोलते हैं। वो कहते कि हे विदुर, देखो कितने दुर्भाग्यशाली है यदु लोग हैं। ये यदुवंशी क्या सोचते हैं? यदुवंशी सोचते हैं कि ये जो कृष्ण है वो हमारे वंश के हैं, हमारे जैसे एक कृष्ण भी यदुवंशी हैं। बल्कि वो कहते हैं कि वो यदुवंशी नहीं जानते कि कृष्ण उनसे परे है। जिस प्रकार से जल में मछलियां होती हैं और जल में जब चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है तो मछलियां चंद्रमा को भी क्या मान लेती है? हमारे जैसे ये भी एक है, मछली का प्रकार है चंद्रमा को, जो उनसे दिव्य है। तो उसी प्रकार से उद्धव कहते हैं कि यदुवंशी कृष्ण को मानते हैं कि हमारे जैसे ही एक सर्वसाधारण व्यक्ति वो यदुवंशी है, कृष्ण भी एक यदुवंशी है। तो इस प्रकार से यहाँ कश्यप मुनि ये बताना चाहते हैं कि जो व्यक्ति अपने शरीर के प्रति अत्यधिक आसक्त है और शरीर का बड़े लाड़ प्यार से पालन पोषण करने में निमग्न है, इसलिए वो शब्द यूज करते हैं उपलालतन, आखिरी शब्द है लालन पालन, लाड़ प्यार से करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति कभी भी भगवान को नहीं समझ सकते, उनके भक्तों के चरित्र को नहीं समझ सकते, बल्कि ऐसे मूर्ख व्यक्ति भूल जाते हैं कि ये जो शरीर है वो विनाश होने वाला है। इसलिए कश्यप मुनि कहते हैं शो भोजनम, मतलब अंत में ये शरीर कुत्तों का भोजन बनने वाला है। प्रभुपाद कहते हैं कि ये शरीर की गति क्या है, या तो जलाने के बाद राख में परिवर्तित हो जाता है, दफनाने के बाद मिट्टी में परिवर्तित हो जाता है, या फिर पारसी लोग हैं वो डेड बॉडी को फेंक देते हैं और सियार कुत्ते गीदड़ उस शरीर को क्या करते हैं, खाते हैं और मल में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से देखा जाए ये शरीर का कुछ वैल्यू नहीं है, लेकिन यदि इसको धर्म के कार्य में लगाते हैं तो ये परम सिद्धि दे सकता है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधना, इसलिए वेद कहते हैं कि शरीर माध्यम है जिसके द्वारा भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। इसी कारण से कश्यप मुनि यहाँ बताना चाहते हैं कि जो आत्म तत्व में अंधे हैं, जो अपने आप को नहीं पहचान सकते, वो शिवजी जैसे परम वैष्णव की स्थिति को क्या जानेंगे, क्योंकि शिवजी के कार्यकलाप और कृष्ण के कार्यकलाप दोनों ही बड़े रहस्यमय हैं, बहुत ही कठिन है समझना। हाँ, इसलिए शिवजी की पोजीशन के प्रति ज्यादातर लोग क्या रहते हैं, अज्ञानी रहते हैं। इसी कारण से प्रभुपाद हमेशा ये श्लोक बोला करते थे, जब भी वैष्णवों का वर्णन आता था प्रभुपाद कहा करते थे वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञान, कि वैष्णवों के कार्यकलाप कोई बड़ा से बड़ा विद्वान व्यक्ति हो वो भी नहीं समझ सकता। भक्ति सिद्धांत महाराज एक उदाहरण दिया करते थे, वो कहा करते थे कि एक वैष्णव था जो अपने घर के सामने मछली सुखाने के लिए डालता था, किसी और की मछलियां होंगी लेकिन वहां वो स्पेस देता था। तो कोई भी व्यक्ति बाहरी रूप से जाता था, वो कहते थे अच्छा ये भक्त के घर के बाहर मछलियां सूख रही है, इसका मतलब ये क्या खाता है, मछलियां खाता है। भक्ति सिद्धार्थ महाराज कहते ऐसे नहीं था। तो बाहरी रूप से यदि हम किसी का आकलन करते हैं तो निश्चित रूप से हम धोखा खा सकते हैं। इसलिए चैतन्य भागवत में पुंडरिक विद्यानिधि का वर्णन है। पुंडरिक विद्यानिधि को बाहरी रूप से कोई देखता है तो वो उनके प्रति महान अपराध की भावना अपने हृदय में जागृत करता है। ऐसी भावना गदाधर पंडित जैसे भक्त के हृदय में आ गई। गदाधर पंडित ने पुंडरिक विद्यानिधि के बारे में बहुत कुछ सुना कि चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन में लोटपोट हो जाते थे, भावावेश में आ जाते थे, तो ये शब्द बोलते थे हे मेरे बाप, हे बाप तुम कहाँ हो। तो भक्त लोग सोचते थे ये बाप बाप किसको कह रहे हैं महाप्रभु, तो बाद में पता चला कि ये बाप किसको कह रहे हैं, पुंडरिक विद्यानिधि को, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में है और पुंडरिक विद्यानिधि कृष्ण लीला में वृषभानु महाराज है। तो महाप्रभु ने कहा कि पुंडरिक विद्यानिधि महान भक्त है जिनका आगमन नवद्वीप में होने वाला है। तो ऐसे पुंडरिक विद्यानिधि नवद्वीप में आते हैं एक स्थान में, तो गदाधर पंडित बहुत उनके बारे में सुना, उनको लगा नहीं उस भक्त के बारे में बहुत कुछ सुना है, चलो एक दिन दर्शन करने जाते हैं, उनसे मिलते हैं, बात करते हैं। तो उन्होंने सोचा किसके साथ जाओ, तो देखा मुकुंद थे सबसे बड़े गवैया, बेस्ट कीर्तन डिवोटी महाप्रभु की लीला में, वो गाएंगे तो महाप्रभु नाचेंगे, नहीं तो नहीं नाचेंगे। तो ऐसे मुकुंद के साथ गदाधर पंडित जाते और वो देखते हैं उनको। वहां क्या देखा कि ये पुंडरिक विद्यानिधि बिल्कुल एक महा बड़े से सुंदर पलंग पर लेटे हुए हैं और उनको लोग पंखा चामर आदि कर रहे हैं और विलासी कपड़े भी सिल्क के कपड़े धारण किए हुए हैं चमकीले, और पूरे अंगराग चंदन आदि लगा हुआ है, बाल व्याय से सुगंधित तेल उस बालों में है, और वो लेटे हुए हैं, कोई उनकी मसाज भी कर रहा है, और मुख में क्या है, उन्होंने पान चबा रहे हैं, लाल ओठों में लालिमा छा गए हैं। अभी ये सब देखा गदाधर पंडित ने, तो गदाधर पंडित ने कहा, आया मैं गलत जगह, मेरा आगमन हो गया है, मुझे लगा कि ये तो महान वैष्णव है, हाँ लेकिन ये तो लगता है पक्का विलासी नंबर वन है। हाँ लेकिन ये जो बात मुकुंद ने जानी कि गदाधर पंडित के मन में कुछ ऐसी भावना आ रही है जो उचित नहीं है पुंडरीक विद्यानिधि के प्रति, तो गदाधर पंडित ने श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के एक श्लोक का गान किया, अहो बकियम स्तनकालकृतम, कि भगवान कितने दयालु हैं कि बाल घातिनी जो उतना है, हाँ जब भगवान को अपने स्तनों में जहर लगा के मारने के लिए आती है, फिर भी भगवान उसके ऊपर दया करके अपने गोलोक वृंदावन में अपनी माता का स्थान प्रदान करते हैं। ये श्लोक जब पुंडरीक विद्यानिधि के कानों में घुसा, पुंडरीक विद्यानिधि भावावेश में आ गए, सुनने मात्र से, ये उन्नत भाव का लक्षण है, कृष्ण के बारे में थोड़ा सा सुनने मात्र से, हाँ जो सेवा या प्रेम की भावना है उस महान भक्त के हृदय में जागृत हो जाती है, और अपने भावों को वो कंट्रोल नहीं कर पाता। वैसे ही पुंडरीक विद्यानिधि ने जैसे भागवत की इस कृष्ण महिमा का गान सुना, पुंडरीक विद्यानिधि उस बेड से गिर पड़े, हा कृष्ण हा कृष्ण, हाँ कहते हुए चिल्लाने लगे, भगवान के प्रति प्रेम की भावना का प्राकट्य करने लगे। तो ये किसने देखा, गदाधर पंडित ने। तो गदाधर पंडित सोचे कि मुझसे बड़ी गलती हुई है, क्योंकि जैसा दिखता है वैसा नहीं था। हाँ इसलिए कहां से देखना चाहिए, वैदिक विधि है कानों के माध्यम से, हाँ श्रवणम के माध्यम से हम वैष्णव को देख सकते हैं और भगवान को भी देख सकते हैं। इसलिए शुकदेव गोस्वामी द्वितीय स्कंद में शब्द यूज करते हैं श्रुत इक्षित पदः। ये हमारा पद कौन सा है, श्रुत इक्षित, श्रुत मीन्स सुनना, इक्षित मीन्स देखना, पद मीन्स पाथ, रास्ता या प्रोसेस है, भगवान को देखने की प्रोसेस है उन्नत वैष्णव के माध्यम से श्रवण करण। जैसे प्रभुपाद थे, प्रभुपाद जब इलाहाबाद से गए थे वृंदावन, उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ब्रजमंडल परिक्रमा कर रहे थे, तो सारे भक्त एक शेषशायी विष्णु का दर्शन करने के लिए जा रहे थे, तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा मैं तो यहाँ रहूंगा और प्रवचन दूंगा और बाकी लोग जो जाना चाहते हैं तो जाइए। तो सारे लोग गए, गिने चुने भक्त रह गए, कुछ ही भक्त रह गए, बहुत कम, भक्ति सिद्धांत महाराज बोल रहे थे, प्रवचन दे रहे थे, उसमें भक्ति प्रभुपाद भी थे। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने प्रवचन देख के खत्म किया, तो वो लोग वापस आए, तो उन्होंने कहा कि आपके आंखों की एक्सरसाइज हो गई, तो केवल कृष्ण को आंखों के माध्यम से देखा नहीं जा सकता, कैसे देखा जा सकता है, कानों के माध्यम से। तो इस प्रकार से हाँ शास्त्र कहते हैं कि जो महान वैष्णव है या महान वैष्णव है उनका जो आकलन है बाहरी रूप से हम करते हैं, तो निश्चित रूप से अपने जीवन में अहित को ही हम क्या करते हैं, आमंत्रित करते हैं। तो ऐसे जो भगवान शिव जी हैं उनका जो स्थिति है वो अत्यंत उत्तम है, इसलिए महाभारत में शिव जी के बारे में वर्णन आता है, जहां अनुशन पर्व में युधिष्ठिर महाराज एक बार डिजायर व्यक्त करते हैं, वो कहते हैं कि मुझे, वो भीष्म के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि मुझे शिव जी के बारे में सुनना है, जानना है उनकी स्थिति के बारे में। तो भीष्म कहते हैं कि वो एक मतलब था कि वो शिव तत्व को जानना चाह रहे थे, और शास्त्र कहते हैं कौन व्यक्ति है तत्व को जान सकता है, तो वर्णन आता है महाभारत में, साहंकारा दयाहीना गुरु सेवा विवर्जिता असत्यवाद न क्रूरा नते तत्वं विजानते
कौन सा व्यक्ति तत्व को नहीं जान सकता, तो वो कहते हैं स अहंकारा, जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार है, फॉल्स ईगो है, अहंकार से जो व्यक्ति फला फुला है, दयाहीना, दया की भावना से रहित है, गुरु सेवा विवर्जिता, अपने आध्यात्मिक गुरु की सेवा से क्या है, रहित है, कि आध्यात्मिक गुरु की सेवा का जिसने त्याग किया है, असत्यवादिना, जो असत्य भाषण करता है, क्रूरा और एक क्रूर, ऐसा व्यक्ति कभी भी भगवत तत्व और भक्त तत्व इनको क्या नहीं कर सकता, जान नहीं सकता। तो भीष्म कहते हैं मैं जानता हूं कि शिवजी को केवल एक ही व्यक्ति जानता है। जैसे चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, शिवजी स्वयं कहते हैं अहम व्यक्ति शुको व्यक्ति, हाँ कहते हैं भागवतम को तो दो ही लोग जानते हैं, शिवजी कहते मैं जानता हूं और शुको व्यक्ति, व्यास तो व्यक्ति, व्यास जानते हैं या नहीं जानते मैं नहीं जानता। तो उसी प्रकार से शिवजी को जानना अत्यंत कठिन है, उनकी स्थिति को समझना। भीष्मदेव कहते हैं कि एक ही व्यक्ति है इस यूनिवर्स में जो शिवजी को जानते हैं, और वो है कृष्ण। कौन है वो? कृष्ण है। तो इतनी उन्नत या इतनी उत्तम स्थिति है, हाँ, तो इतना कठिन है शिवजी के स्वरूप को समझना। तो बल्कि हमें इतना कुछ समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए उनकी महिमा का गुणगान करने का। जब हम उनकी महिमा का गुणगान करते हैं, उनको सर्व करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो जो तत्व है वो क्या होता है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। जब हम प्रशंसा करेंगे, उनकी महिमा का गान अपने जीवा से करते हैं भगवान और उनके भक्तों का, तो स्वाभाविक रूप से हम उनको धीरे धीरे जानने लगते हैं। उन कितना कठिन है, शिव जी के स्वरूप रूप को ही देखो, जैसे मैंने चर्चा की उनके जो आभूषण आदि है, चित्र विचित्र वेशभूषा है, भूतों के समान ही है, भूतों से भी ज्यादा भूतमय है भौतिक रूप से देखे तो उनको रूप को समझना कठिन है। उनके कार्यकलाप को देखो, एक्टिविटीज को देखेंगे तो वो भी कितना कठिन है। वो हमेशा साथ देते असुरों का, काशीराज जो भगवान कृष्ण के वैरी है, रावण, काशीराज जानते, काशीराज ने जब प्रार्थना की कि मैं युद्ध करने के लिए निकला हूं, आपको मेरे साथ चलना होगा, तो जो काशीराज है, शिवजी ने ये जो काशी है वो काशीराज को दे देते, उनको राजा बना दिया था। और इतना वो उनका भक्त था कि काशीराज कृष्ण से ईर्ष्या करता था। एक बार उसने अपना जो मित्र है दंत वक्र आदि, इनके साथ लेकर युद्ध करने के लिए निकला काशीराज गया। उसने अनाउंस किया काशी में कि मैं कृष्ण का सर अलग करके काशी में डाल दूंगा, अपने नगर वासियों को बोला, अभी जा रहा हूं द्वारका युद्ध करने के लिए। तो ऐसे ये पहुंचे और उन्होंने कहा शिवजी आपको भी मेरे साथ चलना है। शिवजी तैयार हो गए, कैसे समझ सकते हो शिवजी के इस कार्य को, शिवजी अपनी पूरी सेना लेके उनके साथ और वो कृष्ण से युद्ध करने के लिए, कृष्ण द्वारका से आते हैं और वो देखते कि अच्छा काशीराज भी है और सामने कौन है, शिवजी भी है, वो भी अपने सेना के साथ, और उनका वो जो शिव जोर, भागवत में पढ़ते ना विष्णु जोर शिव जोर का युद्ध होता है, फिर वो शिव जोर स्तुति करते हैं भगवान कृष्ण की। तो वैसे ही ये काशीराज जाते और फिर भगवान क्या करते हैं, उनका रामबाण औषध है कृष्ण का, क्या है, सुदर्शन, सुदर्शन के द्वारा काशीराज की गर्दन अलग कर देते हैं और वो डाल देते वहां, कहां, काशी में गिरा देते हैं, कुंडल ऐसे चमक रहे थे। तो जो काशीवासी नगरवासी जो लोग थे वो दूर से देखा, अच्छा हमारा राजा बोल के गया था कृष्ण का सर काट के फेंकूंगा, यहाँ लग रहा है कि कृष्ण का ही सर है, लेकिन नजदीक जाके देखा तो उनके ही राजा का क्या था, वो सर था। और जब वो देखा वो चकित हो जाते हैं, और फिर जब इसका सर कटा तो पीछे भगवान ने देखा इस शिवजी भी खड़े हैं अपने त्रिशूल युद्ध के लिए,
भगवान ने अपना सुदर्शन छोड़ा, किसके पीछे छोड़ा? शिवजी के पीछे छोड़ा। और शिवजी भाग रहे हैं, जिस प्रकार से दुर्वासा मुनि भाग रहे थे उसी प्रकार से ये भाग रहे थे। तो भगवान कुछ विशेष शिक्षा देना चाह रहे थे और शिवजी पे एक स्थान प्रदान करना चाह रहे थे। तो शिवजी दौड़ रहे लेकिन दौड़ के फाइनली किसके चरणों में आते हैं? कृष्ण के चरणों में आते हैं। शिवजी को कहते हैं, कृष्ण कि क्या हो जाता है शिवजी तुम्हें, हाँ बीच बीच में अब भूल जाते हैं हाँ जो मेरी स्थिति है। तो शिवजी कहते हैं कि भगवान क्या करो, आप मुझे सदैव आपके चरणों में स्थान दो ताकि कभी भी मैं आपको भूल नहीं सकता। और वास्तव में शिवजी इसी एक चीज की ही सदैव कामना करते हैं। और आप जानते हैं फिर शिवजी को कहाँ भेजा भगवान ने? भगवान ने कहा मेरा एक विशेष धाम है नीलाचल, नीलाचल जहां जगन्नाथपुरी में मैं निवास करता हूं, वहां जाकर तुम निवास करो। और वहां किस रूप में निवास करो? क्षेत्रपाल के रूप में निवास करो, सिक्योरिटी गार्ड के रूप में, मेरे धाम का रक्षक बनो। तो ऐसे शिवजी को एक विशेष स्थान देते हैं और जिस स्थान का नाम था एकाम्र कानन, मतलब एक ऐसा बड़ा आम का ट्री कई योजन फैला हुआ, जहां शिवजी को कहते वहां जाकर तुम रहो और मेरी सेवा करो, उसी का नाम आज क्या है? भुवनेश्वर, जहां शिवजी निवास करते हैं लिंगराज महादेव के रूप में। और वो वास्तव में जगन्नाथपुरी का गेटवे है, जगन्नाथपुरी में घुसना है तो शिवजी जो भगवान के भक्त हैं उनका आशीर्वाद लेकर व्यक्ति को घुसना चाहिए अंदर धाम में। जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप से पुरी गए तो वो जाकर शिवजी की स्तुति करते हैं, शिवास्तकम का गान करते हैं, तो इस प्रकार से शिवजी को वो स्थान देते हैं भगवान। इसलिए किसी भी धाम में आप जाओ वहां कौन मिलेंगे आपको? शिवजी। जहां भी कृष्ण का मंदिर है वहां किसका मंदिर है? शिवजी का। इसका कैलाश में जाओ, पारसारथी का मंदिर वहां है, उसके पीछे छोटा सा पहाड़ी है उसमें किसका मंदिर है? शिवजी का मंदिर है। और वृंदावन जाओ, चार दिशाओं में चार शिवजी हैं। वृंदावन में गोपेश्वर है और गोवर्धन में चकलेश्वर है, मथुरा में भूतेश्वर है, काम्यवन में कामेश्वर है। तो इस प्रकार से भगवान क्या है, अपने धाम की जो रक्षा है करने के लिए उनको वो स्थान प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से देखे बाहरी रूप से शिवजी के कार्यकलाप देखे तो बड़ा अटपटा सा लगता है, समझना बड़ा डिफिकल्ट है। अब देखो मोहिनी अवतार जब भगवान का हुआ, शिवजी को काम वो विष्णु के पास भगवान के पास जाते थे, मुझे ना मोहिनी को देखना है। भगवान कहते अरे बाबा मत देखो, नहीं वो अटक है। और अपनी भार्या उनके साथ थी, पार्वती देवी साथ थी, फिर भी वो कहते कि नहीं मुझे देखना ही है। अभी कैसे समझे इनकी जो स्थिति को है? हाँ तो वैसे हम हैं, हम श्याम सुंदर को नहीं देखना चाहते हैं, श्याम सुंदर का जो माया रूप है उसको देखना चाहते हैं। जैसे प्रभुपाद एक बार अपने एक शिष्य के साथ एक जू प्राणी संग्रहालय से गुजर रहे थे, तो वहां एक शेर का बच्चा था छोटा सा, और प्रभुपाद वॉक करके आगे गए, एक भक्त पीछे रह गए और उसकी पूछ ऐसे बाहर आ गई थी, ये जो भक्त है पूछ को ऐसे कर रहा था। तो प्रभुपाद ने जब देखा ये पूछ को खींच रहा था, प्रभुपाद ने कहा माया इज स्मॉल बट डेंजर। प्रभुपाद कहते मत सोचो कि ये छोटी माया है लेकिन फिर भी वो क्या है आपके लिए? डेंजर है, शेर का बच्चा तो शेर के समानी है। तो उसी प्रकार से हम भी भगवान के उस श्याम सुंदर रूप को नहीं देखना चाहते, माया के रूप को देखना चाहते या अनुभव करना चाहते। शिवजी अटक गए और शिवजी ने क्या किया? कहा कि मुझे देखना ही है। हाँ तो फिर भगवान ने दिखाया मोहिनी रूप, और वर्णन आता है भागवत में पूरे 2-3 अध्याय में कि किस प्रकार से भगवान का, भगवान कुछ भी बनते हैं तो वो बेस्ट है, टॉप मोस्ट। चोर बनेंगे तो नंबर 1 के चोर, माखन चोर। या जो कोई स्त्री बनेंगे तो कैसे बनेंगे, सारे भूतल में क्या, सारे संसार में सबसे सुंदर स्त्री, उनके समान कोई नहीं हो सकती। तो ऐसे भगवान मोहिनी रूप में आए थे। जब देखा कि वो जो भगवान प्रकट हो गए मोहिनी के रूप में सामने, एक गेंद को ऐसे उड़ा रहे थे, बॉल के साथ खेल रहे थे और वस्त्र पहने थे, साड़ी वगैरह ना, तो फिर देखा तो शिव जी अट्रैक्ट हो गए और उसके पीछे भागे, भूल ही गए कि ये कौन है, विष्णु। तो शिव जी के ऐसे जो कार्यकलाप हैं उनको हमारे बुद्धि से परे है, इसलिए विष्णु कहते हैं पूर्ण रूपेण शिव जी की स्थिति को कोई जानता है तो वो कौन है, कृष्ण है। इसलिए कृष्ण के बेस्ट फ्रेंड है शिव जी, ऐसे पुराणों में वर्णन आता है। तो जनरली जो लोग हैं वो क्या करते हैं, शिव जी के इन दोषों के प्रति, दोष क्या, इस प्रकार के जो कार्यकलाप हैं उनको दोष समझ लेते हैं, लेकिन कभी भी शिव जी के गुणों की चर्चा नहीं करते, गुणों को जानते नहीं हैं या गुणों के बारे में समझने का प्रयास नहीं करते। तो ऐसे शिव जी महान वैष्णव हैं जिनके बारे में शास्त्रों में कई सारी घटनाओं का वर्णन है और जिनको कई दिनों तक चर्चा की जा सकती है। तो ऐसे शिव जी का वर्णन करते हुए आचार्य गण कहते हैं, ब्रह्मा बोले चतुर्मुखे महादेव पंचमुखे। ब्रह्मा चार मुखों से कृष्ण कृष्ण बोलते हैं और जो शिव जी हैं अपने पांच मुखों से क्या बोलते हैं, राम राम हरे हरे। तो शिव जी के ओरिजिनली पांच मुख हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन आता है कि शिव जी भगवान कृष्ण से बहुत आकृष्ट हो गए थे, भगवान के सौंदर्य को इतना देखना चाह रहे थे बारंबार। तो फिर जब उन्होंने कृष्ण का भजन किया तो कृष्ण प्रकट होते हैं, शिव जी को कहते क्या चाहिए तुम्हें, वो कहते मुझे असंख्य आंखें चाहिए जिसके द्वारा मैं आपको देख सकता हूं। हाँ, तो उनको फिर असंख्य, तो उन्होंने पांच बार या कुछ ऐसे बोला था, तो उनको पांच मुख हो जाते हैं जिसके द्वारा दस आंखों से वो कृष्ण को निरंतर देखते हैं और अपनी पांच जीवा से भगवान के नामों का क्या करते हैं, सदैव उच्चारण करते हैं। तो ऐसे शिव जी भगवान कृष्ण से एक प्रार्थना करते हैं, वो कहते हैं, क्योंकि शिव जी ने उनको एक बार बोला, भगवान कृष्ण ने उनको बोला था कि शिव जी तुम मेरे नामों का जप करने के लिए बहुत ज्यादा आसक्त हो। शिव जी को कहते हैं कि सारे योगियों में तुम सबसे अधिक फेमस हो, मैं चाहता हूं जो शेर के ऊपर सवारी करती है ना दुर्गा देवी, उसके साथ विवाह करो। शिव जी सुन के हक्का बक्का हो जाते हैं, शिव जी हंसने लगते हैं, कहते हैं हे प्रभु मैं वो स्वीकार नहीं करूंगा, मेरा मन वो उनसे मैं विवाह करूंगा ना जो शेर के ऊपर बैठती है, वो मेरा मन क्या करेगी, आपके भक्ति से अलग कर देगी, आपकी सेवा से अलग हो जाऊंगा और मेरा जो असली ज्ञान है वो उसको ढक सकती है। हाँ, क्योंकि उसमें स्वाभाविक रूप से रजोगुण है और मेरे अंदर भी कामों की इच्छाओं की वृद्धि करेगी, मेरी तपस्या खत्म हो जाएगी और मैं इल्यूजन का स्टोर हाउस हो जाऊंगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, लंबा वार्तालाप है। तो ये शिव जी जब बोल रहे थे तो कहते हैं, शिव जी कहते मुझे पत्नी नहीं चाहिए, उनको रिक्वेस्ट करते कृष्ण को, लेकिन कृष्ण कहते नहीं, सेवा के लिए तुम्हें स्वीकार करना होगा। तो फिर एक वर मांगते हैं, शिव जी कहते हैं कि मेरा मुझे यही वर दीजिए कि आपके प्रति जो मेरी सेवा और भक्ति की भावना है वो बढ़ती रहे और आपके नामों का उच्चारण निरंतर करता रहो और आपकी सेवा करके मैं कभी तृप्त ना हो जाओ। वो कहते हैं तुम नाम पंच वक्रे न गुणम च मंगलालयम स्वप्ने जागरणे शश्वत गायन गायन रमामि हम। तो शिवजी बड़ा अच्छा वर मांगते हैं। शिवजी कहते हैं त्वं नाम पंच वक्रेण, आपका नाम पांच मुखों से बोलता रहो, गुणम च मंगलालयम, आपके गुण है कृष्ण, मंगल के आलय है, भंडार है। स्वप्ने जागरणे शश्वत, और आपके नामों का कीर्तन कब तक करता रहूं मैं? स्वप्न में मैं हूं तभी भी आपके नामों का कीर्तन करता रहना चाहिए मुझे, ऐसा मुझे आशीर्वाद दो। और जागरण में जब जगा हूं, शश्वत गायन गायन भ्रमामिहं, और इस पृथ्वी में मैं जहां जहां विचरण करो वहां वहां क्या करो, आपके नामों का गान करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से शिव जी की एक में इच्छा है कि वो भगवान के हरि के नाम को गुण लीलाओं का सदैव क्या करना चाहते हैं, गान करना चाहते हैं। तो यहाँ दशरथ मुनि यही कहते हैं कि शिवजी जैसे परम महाभागवत को जो भौतिक भोगों के प्रति, शारीरिक देहात्म बुद्धि के प्रति आसक्त व्यक्ति कभी उनको समझ नहीं सकता, और ऐसा व्यक्ति मूर्ख है, दुर्भाग्यशाली है, अभागा है, जो उनके कार्य कलापों को देखकर क्या करता है, हंसता है या निंदापूर्ण वचन कहता है। हंसते कब है हम किसी के प्रति? जब हमारे अंदर निंदापूर्ण कुछ विचार हमारे हृदय में भरते हैं तब हम किसी व्यक्ति के प्रति हंसते हैं। तो उसी प्रकार से वो कहते हैं ऐसा अंधा अभागा व्यक्ति है, आसक्त व्यक्ति है, जो शिवजी के प्रति दुर्वचन कह सकता है या उनके प्रति हंसता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथाश्रम भागवत की श्री गुरुपाद की।